आप हैं SBS हिंदी के साथ।
सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि सनस्क्रीन क्रीम लगाई जाए, लेकिन सनस्क्रीन क्रीम से कई तरह की बीमारियों के खतरे की बात भी कही जाती रही है, और उसका कारण है इन क्रीम्स में प्रयोग होने वाले केमिकल्स जो कि हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि क्रीम में प्रयोग हो रहे सभी इंग्रेडिएंट्स सूचीबद्ध लिखे हों। तो इसी संबंध में बात की है कैंसर काउंसिल से स्किन कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा शर्मा से, कुछ उन आम चिंताओं के बारे में जो अक्सर सामने आती हैं। अब चूंकि विटामिन डी सूर्य से मिलता है, तो एक चिंता ये भी आती है कि सनस्क्रीन सूर्य की किरणों को रोकती है, तो इससे विटामिन डी की कमी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बन जाता है। क्या ये सच है या एक भ्रांति, तो इसके बारे में डॉक्टर पूजा कहती हैं।
जी अनीता जी, ये सही बात है कि हमारे बोन्स को विटामिन डी की बहुत जरूरत है और हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो हमारी जो स्किन है, जो इंडियन स्किन है, उसमें पिगमेंट और मेलानिन की तादाद काफी है, जिस वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है जितना कि एक कॉकेशियन या गोरी चमड़ी में होता है। तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा विटामिन डी नहीं बनाती है और हमें सन की रेज पर डिपेंड होना भी नहीं चाहिए विटामिन डी के लिए
जी।
क्योंकि हमारे में प्रोडक्शन काफी कम होता है। दूसरी बात रही सनस्क्रीन की, सनस्क्रीन अप्लाई करने से यूवी रेज का अब्सॉर्प्शन कम होता है। हालांकि सनस्क्रीन एक कोट ऑफ आर्मर या फिर एक कवच नहीं कह सकते हैं। सनस्क्रीन लगाने के बाद भी विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। अगर कैंसर काउंसिल की माने जाए तो हालांकि गोरी चमड़ी के लिए कहा जाता है, बट 10 से 15 मिनट का सन एक्सपोजर काफी है विटामिन डी बनाने के लिए
जी। तो ये तो एक भ्रांति है लोगों के मन में, और इसी तरह से कोई टॉक्सिक सन क्रीम्स भी होती हैं, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च करें तो पता नहीं कितनी रिजल्ट्स उसके सामने आ जाएंगे टॉक्सिक सन क्रीम्स के नाम पर। तो ये इससे क्या समझें हम?
ये मैं सच में कहूंगी कि एक भ्रांति है या मिथ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सनस्क्रीन टॉक्सिक होते हैं। सनस्क्रीन में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो काफी रिग्रेस रेगुलेशन से निकलते हैं। हाँ। और जो थेरेप्यूटिक गुड्स ऑस्ट्रेलिया है, जो TGA कहा जाता है, वो ऐसे कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट को यूज होने नहीं देता है हमारे सनस्क्रीन्स में। इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि हमारे सनस्क्रीन्स काफी सेफ हैं और उनके केमिकल्स भी सेफ हैं।
अच्छा जी, और कई बार ये भी कह दिया जाता है कि अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और या कभी पहले हमें स्किन कैंसर हो चुका है हमारी फैमिली में, तो हमारे लिए फिर ये सनक्रीम लगाना कुछ मायने नहीं रखता। क्या ये सोचना सही है?
मैं कहूँगी कि ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि सनस्क्रीन एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी रेगुलर स्किन केयर का, जिसमें हमें सन से प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सन की रेस काफी स्ट्रॉन्ग आती हैं और औसतन समर्स में यूवी आराम से 10 से 12 तक जाता है यूवी इंडेक्स। ये यूवी इंडेक्स काफी हानिकारक है हमारी स्किन के लिए, और अगर ज्यादा सन एक्सपोजर हुआ तो किसी भी एज ग्रुप में स्किन कैंसर होने की संभावना काफी है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक पेशेंट है जो कि स्कूल टीचर हैं, जो कि इंडिया से आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद वो एक स्कूल टीचर हैं और सन एक्सपोजर की वजह से उनको यहाँ पर स्किन कैंसर हुआ है और उनकी एज करीब 55 साल की है। तो कोई भी एज ग्रुप इससे बचा नहीं है।
हाँ,
ये सोचने वाली बात जरूरी है कि ये सन प्रोटेक्शन का जो हम एम्फेसिस करते हैं, ये हमेशा से होना चाहिए, खास तौर पर बच्चों में। अगर हम बच्चों में ये आदत डाल दें कि उन्हें सन से प्रोटेक्शन जरूरी है, तो वो आगे जाकर भी ये कंटिन्यू कर पाएंगे।
तो ना तो इसमें एज का कोई मायना है और ना ही ये जो दूसरी बात हम सोचते हैं कि फैमिली में है, जीन्स में है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते चाहे क्या करें, तो ये बहुत ही गलत धारणा बन जाती है लोगों के मन में। और इसके अलावा एक और धारणा भी हो सकती है जिसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। एलर्जिक हैं हम सन क्रीम के, अगर कोई ये कहे तो सन क्रीम से भी क्या एलर्जी हो सकती है?
हाँ जी, ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। सन क्रीम से एलर्जी पॉसिबल है। हाँ, देखा जाए तो किसी भी क्रीम से एलर्जी पॉसिबल है
जी।
और सनस्क्रीन में कई चीजें होती हैं, जैसे कि सन ब्लॉकर्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं सन की रेज को, फ्रेग्रेंसेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो एलर्जी इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को हो सकती है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल रहेगा कि किसको एलर्जी हो सकती है और किसको नहीं
जी।
हाँ, अगर कोई डाउट है तो उसके लिए सनस्क्रीन का टेस्ट कर सकते हैं।
अच्छा।
हम वही सनस्क्रीन को अपने जो कोहनी की अंदर अंदरूनी जगह है जो स्किन की, उसमें रोजाना यूज करके कम से कम 2 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो हम वो यूज करना बंद कर सकते हैं बजाय कि अपने चेहरे पे लगाने के। तो ये एक तरीका है टेस्ट करने का कि आप वो पर्टिकुलर सनस्क्रीन से एलर्जी हैं कि नहीं। और अगर किसी को उस प्रोडक्ट से एलर्जी है तो उसके भी अल्टरनेटिव्स हैं, दूसरी तरह के सनस्क्रीन हैं जो कि जिनमें सिर्फ टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड रहता है, जो कि कम्प्लीटली इनर्ट रहते हैं, जिनसे एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफी यूजफुल रहते हैं
जी। और कितनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, आखिर में आप सुनने वालों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
जी, ये भी बहुत जरूरी है कि कितना सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम काफी कम यूज करते हैं या फिर हम जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें नहीं यूज कर पाते। तो अगर हम कैंसर काउंसिल की सुने तो हर बॉडी के एक पार्ट पर कम से कम 1 टीस्पून या 5 ml का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। जैसे चेहरे और नेक पर 1 टीस्पून, बॉडी के आगे वाले पार्ट पर 1 टीस्पून, पीछे वाले पार्ट पर 1 टीस्पून, हर एक लेग पर 1 टीस्पून और हर एक आर्म पर 1 टीस्पून। तो इन टोटल अगर हम छोटे कपड़े पहने हुए हैं या सन को एक्सपोज कर रहे हैं तो कम से कम 7 चम्मच सनस्क्रीन हमें चाहिए, और ये सनस्क्रीन हमेशा 2 से 3 घंटे में फिर से अप्लाई करना चाहिए अगर हम बाहर हैं तो
जी।
और जैसा कि हम कहते हैं कि सनस्क्रीन काफी नहीं है, इसलिए प्रोटेक्टिव कपड़े, हैट और सनस्क्रीन भी पहनना चाहिए
जी। पूजा जी, सनस्क्रीन के बारे में जो आपने ये जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी।
थैंक यू अनीता जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ऐसे ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहाँ आप podcast सुनते हैं वहाँ हम हैं।